ओम शांति। बेहद के बाप का बेहद का परिवार देख करके मन बड़ा हर्षित होता है। आप सभी को भी इस बेहद मधुबन में ही यह बेहद का परिवार दिखाई पड़ता होगा। बाकी तो हर एक अपने अपने केंद्र पर तो फिर भी कहने में आएगा कि वहां के ही भाई बहने नजर आते हैं, परंतु जब संगठन में देखो, बाबा के बेहद के घर में देखो, तो बाबा का बेहद का परिवार देख करके फिर भी गुण किसके गाएंगे? हाँ, बाप के ही गुणगान करते रहेंगे। और बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे सदा बाप के गुणगान करते ही रहो। जितना जितना हम बाप के गुणगान करते रहेंगे, उतना उतना क्या होगा? हाँ, बाप के साथ साथ स्वयं का भी वह यथारथ स्वरूप याद आता रहेगा। स्वयं की पहचान तो बाबा ने हम सबको दे ही दी है, फिर भी अभ्यास इसी बात का ही है और इसको ही सभी करते भी है, और करते हुए यह भी कभी कभी कह देते हैं कि इसमें बड़ी मेहनत लगती है। वैसे तो जब हमने बाबा कहा तो बाबा को याद करना अथवा बच्चे को स्वयं बाप का बच्चा मानना, वास्तव में यह कोई न मुश्किल बात है न भूलने की बात है, परंतु वंडर इस बात का ही है कि हम जो है और जैसे हैं वैसा ही सदा स्वयं को मान करके चलते रहे, इसी बात का ही हमें विशेष अभ्यास बाबा ने कहा है। क्योंकि बहुत समय से हम स्वयं के यथारथ रूप को भूल चुके थे, जिस कारण जब बाप ने आकर के हमें स्वयं की पहचान दे दी है, तो अनेक जन्मों से भूली हुई बात फिर से याद करने में खुशी तो होती ही है, परंतु वह याद सदा ही बनी रहे उसके लिए हमें इतना ही अपने ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। तो यह अटेंशन देना यह स्वयं का ही काम रहता है, परंतु बहुत समय का अभ्यास भूलने का होने कारण फिर वह पुराना अभ्यास कहे, पुरानी आदत कहे, वो फिर स्मृति को भुला ही देती है। परंतु मैं समझती हूँ अभी के हिसाब के अनुसार, अभी के समय के अनुसार, और अभी के हम ब्राह्मण बच्चों के निश्चय बुद्धि के अनुसार, तो यह भूलना शब्द अब हम भूल ही गए होंगे। और अगर कोई न भूला हो तो आपसे ये अपने से निश्चित कर ले कि भूलने शब्द को हम भूल ही जाएं तो कभी हम स्वयं को भूले ही नहीं और सदा स्वयं के स्वमान में स्थित रहते रहे। तो आज का विषय भी स्वमानधारी स्वस्वराज्य अधिकारी। जब स्वराज्य अधिकारी बने तभी फिर बाबा हमें विश्व राज्य अधिकारी बना देते हैं। परंतु सबसे पहली बात कि हमें स्वमानधारी बनना है, और ये स्वमान यह केवल इस संगम की ही देन है, जबकि संगम युग पर ही सर्वशक्तिवान बाप हमें आकर के अपने स्वमान की पहचान दे करके और स्वमानधारी बना लेते हैं। वैसे तो अभी का क्लास जो आपका हो चुका है, उस क्लास के अनुसार तो आप सब अपने अपने स्वमान की सीट पर ही स्थित होंगे, और उसके साथ हरेक अपनी विशेषताओं को जानते हुए विशेषता संपन्न बन करके ही बैठे होंगे। और जब विशेषता संपन्न बन जाए तो स्वमानधारी तो बने हुए ही रहते हैं। इसलिए आप सभी, अथवा ऐसे कहें हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण अपने स्वमान को जानते हैं और स्वमान में रहने का अभ्यास हर समय हम करते ही रहते हैं, जिससे हर एक को ये अनुभव होगा जब सचमुच हम अपने स्वमान की सीट पर स्थित हैं तो बरोबर अपने अंदर वह अपने में कंट्रोलिंग पावर रहती है, जो हम अपनी चैतन्य शक्तियों को जिस प्रकार से काम में लगाना चाहे उस प्रकार लगा सकते हैं। शरीर की जो भी कर्म इंद्रियां हैं वे तो सदा अपने ऑर्डर से चलती ही है। विशेष बात आती है जो हमारी मूल चैतन्य शक्तियां हैं, क्योंकि जब स्वमान कहा जाता है तो स्वमान का संबंध हम आत्माओं के साथ ही है। आत्मा की स्थिति स्व कहा ही जाता है अपने शुद्ध स्वरूप को। बाकी तो हर एक को अपने अपने शरीर का नाम मिला हुआ है, और उसी नाम से ही हर एक को बुलाता है, जानता है और हर कार्य करता ही रहता है। लेकिन प्रसिद्ध रूप में शरीर का नाम है, कार्य में भी हमारा शरीर का नाम ही काम में आता है। लेकिन ये सब काम करते भी हमें स्वयं को यह स्मृति बनी रहे कि इस शरीर को धारण करने वाली सूक्ष्म शक्ति मैं चेतन आत्मा हूँ। और आत्मा के बारे में बाबा ने हम बच्चों को बड़ा स्पष्ट ज्ञान दे दिया है कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ। सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। यह स्मृति जितना जितना मुझे रहती रहेंगी उतना ही ये हमारी चैतन्य शक्तियाँ, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार वाली है, तो ये मन और बुद्धि जो मुझे आत्मा की चैतन्य शक्तियाँ हैं, उन चेतन शक्तियों को आत्मा स्वयं के कंट्रोल में रखे। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि हर समय उसको ऑर्डर देती रहे और उनसे काम कराती रहे, परंतु जो आत्मा का निजी स्वरूप है, कहा जाता है मैं जो हूं और जैसा हूं, मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूं, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, ये जो मुझे आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, जो शक्ति आत्मा के अंदर समाई हुई है और जो आत्मा की ये शक्तियां हैं, वो शक्तियां मेरे शरीर के कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म में आती रहे, वे तब ही आती हैं जब सचमुच मैं आत्मा अपने इस स्वरूप की स्मृति से हर कर्म करती रहूं। इसलिए बाबा हम बच्चों को सदा इस बात की स्मृति दिलाते रहते हैं कि बच्चे ये सदा याद रखो, क्योंकि यह याद रहने से जितना हम स्वयं के वास्तविक स्वरूप को याद रखेंगे, क्योंकि जैसे हमारा बाप सर्वशक्तिमान अनादि और अविनाशी है, अविनाशी पिता की संतान मैं आत्मा भी अनादि और अविनाशी हूँ। बाप ने हम बच्चों को रूप में भी समानता दी है, गुणों में भी समानता दी है, और जब गुणों में समानता है, अगर वे गुण हम ठीक रीति से कर्मों में लाते हैं, तो बाप समान शक्तियां भी हमारे में मर्ज रहती है। परंतु अगर हम आत्माएं अपने उन ओरिजिनल गुरु से अगर कर्म नहीं करती है, तो फिर हमारी शक्तियों में अंतर पड़ जाता है। इसलिए बाप हम बच्चों को बार बार इस बात की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे सदा ये याद रखो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, क्योंकि परमात्मा की संतान बल ऐसे तो सारी दुनिया मानती है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। यह भी हम जानते हैं, दुनिया मानती जरूर है, परंतु अपने बाप को जानती बिल्कुल ही नहीं है। और यह हम ब्राह्मण बच्चों का सौभाग्य है जो इस संगम पर, जो संगम युग ही बाप का सृष्टि पर आने का समय है, और ऐसे समय पर बाप स्वयं ही हम बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष होकर के हमें स्वयं की पहचान देते हैं। बाबा ने स्वयं अपने महावाक्यों में कहा है कि मैं जब मैं आता हूँ, तब ही मैं आकर के अपने बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, मेरे सिवाय मेरा यथारथ परिचय कोई दे ही नहीं सकता है, इसलिए ही मुझे भी सृष्टि पर आना पड़ता है, और आना भी जरूर है, क्योंकि अगर मैं नहीं आऊं तो तुम बच्चों को मेरी पहचान कौन देगा। इसलिए जब हम बच्चे बाप को पहचाने, बाप को जाने, और बाप हमें जो जो श्रीमत देता जाए उसी अनुसार हम अपने को चलाते रहे, तब तो हम अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाए और अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो करके फिर से अपनी सुखमय जीवन बना सके। इसलिए बाबा हम बच्चों को, क्योंकि ये भी हम देखते हैं कि बाप को ही बच्चों पर इतना तरस है कि मेरे बच्चे अनेक जन्मों से इतना दुख भोगते आए हैं, अब फिर उनको मुझे सुखी जरूर बनाना है। और बाप जब हमें सुख का रास्ता बताते हैं तो सदा के लिए सुखमय जीवन बना लेते हैं, जो हम सब चाहते हैं कि हमारी जीवन सदा सुखमय जीवन बनी रहे। यह चाहना तो हम सबकी है, परंतु वह जीवन बनाने के लिए बाबा जो हमें यह एक छोटी सी बात इसलिए कही जाती है क्योंकि वास्तव में ये स्वयं का ही स्वरूप है। जब मेरा ही रूप है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो अपने रूप को न याद कर सके, वैसे अगर सोचा जाए तो एक हंसी की बात कही जाएंगी, परंतु अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो वास्तव में यह छोटी सी बात ही सभी मनुष्य आत्माओं से भूली हुई है, जो अपने को आत्मा मानते हुए भी अपने शुद्ध स्वरूप की पूरी पहचान न होने के कारण वह शक्ति अपने में नहीं धारण कर पाते हैं, जो अपनी चैतन्य शक्तियों को पूर्ण रूप से एकाग्र कर सके। तो यह एकाग्रता की शक्ति हम आत्मा अपनी चैतन्य मन और बुद्धि अर्थात हमारी संकल्प शक्ति और स्मृति की शक्ति, जब हमें बाप से ये पहचान मिल जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जो मेरा बाप परम धाम का रहने वाला है, इस दुनिया से परे। और जब बाप जिस देश का रहने वाला है तो जरूर है हम बच्चे भी जब बाप के साथ हैं तो हम भी उस देश के ही रहवासी है। अर्थात जब स्वमान कहा जाता है तो स्वमान के अंदर ये बातें सब हमें स्मृति में आ जानी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान ऊंचे ते ऊंचे अर्थात परे ते परे देश परम धाम की रहवासी हूँ। जब हमें ये स्मृति आ जाती है कि मैं तो परे ते परे परम धाम की रहवासी हूँ और हमें वो अपना देश याद आ गया, हम अपने देश निवासी स्वयं को मान करके परे ते परे चले गए, तो ऑटोमेटिकली यह जो पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का जो भी कुछ हमारे में भरा हुआ है, अगर सही रीत से हमें ये स्मृति है, सही रीत से हम उन स्मृति में स्थित हैं, तो यह स्मृति ही हमें इस पुरानी दुनिया की बातों को भूलने में बड़ी मदद कर देती है। अर्थात फिर मुझे इस पुरानी दुनिया की कोई भी बात अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। और यही अनुभव बाबा ने हम बच्चों को कराया है। जब शुरू शुरू में बाबा ने आकर के इस यज्ञ की स्थापना की है और यज्ञ में जब हम बच्चे आए हैं, बल कहने में आता है हम छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप तो जानते हैं ना ये आत्माएं कौन सी है जिन्होंने सारे कल्प के अंदर पूरे 84 जन्म लिए हैं। जब हम शुरू में भले बचपन के रूप में ही बाबा के पास आए, परंतु बाबा जानता है ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने पूरे कल्प के अंदर अपना पाठ बजाया है। और वो आत्माएं जब हम बाबा के सामने आए, बाबा के सामने आने से बाबा ने सिर्फ ये स्मृति दी और वो स्मृति ऐसी बन गई जो एक धक से पुरानी दुनिया को बाप ने भुला ही दिया। तो बाबा ने इस बात का अनुभव कराया कि बरोबर जब बच्चों को बाप स्वयं आकर के पहचान देते हैं और उस पहचान को पा करके जब बच्चा सचमुच इस बात को रियलाइज कर लेता है तो वह रियलाइजेशन मेरा बाप है, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं फिर से अपने बाप के गोदी में आ गया हूँ, मुझे फिर से अपना बाप मिल गया। जब वह उस आत्मा को अंदर में स्मृति जागृत हो जाती है तो यह स्मृति इस पुरानी दुनिया की सर्व बातें भुला ही देती है, फिर कोई भी पुरानी दुनिया की बात आकर्षित नहीं करती है। यह बाबा ने यज्ञ स्थापना के समय बच्चों को अनुभव कराया है और अभी भी हर आत्मा जितना जितना बाप के महावाक्यों को अपने मन के अंदर बार बार स्मृति में ला करके उस स्मृति में जब स्थित हो जाती हैं तो इस बात का जरूर अनुभव करती रहेंगी कि स्मृति में जब है तो बाकी सब बातें भूल ही जाती हैं। ऐसे स्वमानधारी, जिस स्वमान के अंदर हमें स्वयं के वास्तविक स्वरूप की स्मृति, स्वयं के अविनाशी पिता की स्मृति और स्वयं का जो ओरिजिनल देश, जिस देश से हम इस सृष्टि मंच पर आकर के अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, परंतु ये वास्तविकता जितनी जितनी हमारे अंदर स्मृति में रहती है उतना ही हम उस स्मृति स्वरूप बनने से बाकी जितनी भी बातें हैं वे सब हमारे मन से हट जाती हैं। अर्थात यह हमारी चैतन्य शक्ति, मन जिसको संकल्प शक्ति कहा जाता है, वह हमारी संकल्प शक्ति एकाग्र हो जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात करने से, यहाँ वहाँ की बातों को से में भटकने से रुक जाती है, अर्थात उनका भटकना बंद हो जाता है और यही शुद्ध संकल्प, मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ, यह शुद्ध संकल्प में जब स्वयं मैं आत्मा स्थित हो जाती हूँ, जिसको कहा जाता है स्वमानधारी। ऐसे तो हम कहेंगे बाबा ने हमें कितने भिन्न भिन्न शब्दों में अपने स्वमान की बातें बताई हैं, कितने स्वमान बाबा ने हमें बताए हैं, जो वास्तव में मूल बात यही है, परंतु वो बात हमें सदा स्मृति में रहे, क्योंकि बाप जानते हैं, बच्चों को अभ्यास है, अगर एक ही बात उसको बता दो तो एक बात में स्थित रहने में जल्दी उसका मन नहीं लगेगा, मन को फिर वैरायटी बातें चाहिए, शब्द भी भिन्न भिन्न चाहिए और स्वाभाविक है जैसा शब्द वैसा उसका अर्थ भी बन जाता है। और बाबा ने हमें हर शब्दों का यथारथ अर्थ और उस अर्थ में कितनी शक्ति समाई हुई है, उन सब बातों का स्पष्ट वर्णन करके बाबा ने हम बच्चों को बताया है। और बाबा ने हमें इसलिए ही बताया है कि हम बच्चे जो भिन्न भिन्न अनेक प्रकार की बातें सुनते आए हैं भगवान के बारे में, वास्तव में बाप का यथारथ रूप, यथारथ नाम जो बाप स्वयं बताते हैं वही यथारथ माना जाएगा। और उस यथारथ रूप को ही जान करके जब हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं तब हम आत्माएं अनुभव करती है बरोबर, जो अनेक जन्मों की मैल कहें अथवा अनेक जन्मों से जो अनेक प्रकार की बातों में हम फंस करके अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न कर्म करते ही आए हैं, उन सर्व कर्मों से बच जाते हैं। और फिर हम अगर बाप की श्रीमत के अनुकूल श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का भी पहला आधार यही है, जबकि हम बाप की स्मृति और स्वयं के यथार्थ स्वरूप के स्मृति में रह करके कर्म करते हैं। क्योंकि जब हम स्वयं का यथार्थ स्वरूप स्मृति में लाते हैं तो उससे जो मेरी ओरिजिनल शक्तियां हैं वो इमर्ज होती रहती है। उन शक्तियों के आगे जो भी बुराइयां हैं, जिसको आज हम विकार कहते हैं अथवा माया कहते हैं, जिस माया ने इतना वार कर दिया है, जो हम उसको माया से स्वयं को दूर करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो विकार हमारे सामने अपना रूप दिखाते रहते हैं। परंतु अगर हम स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास अच्छी रीत करते रहते हैं, मन के अंदर हमें ये पूरी लगन लगी हुई हो, मैं जो हूं और जैसी हूं, जो बाप ने मुझे बताया है मुझे उसी के अनुकूल ही कर्म करना है, उनके सिवाय हमें कोई कर्म नहीं करना है, एक तो हमारे मन के अंदर वो दृढ़ता बनी रहे और इस दृढ़ता के साथ साथ ये अभ्यास का हमारा इतना अटेंशन रहे। हर एक अपने आप को देख सकते हैं, जब हमारी अभ्यास में कमी पड़ जाती है तब ही फिर कोई ना कोई बात हमारे ऊपर वार कर सकती है। लेकिन अगर हमारा सदा अभ्यास का अटेंशन बना रहता है तो वो अभ्यास का अटेंशन अर्थात हम अभ्यास करते ही रहते हैं, भले अभ्यास में कभी तीव्र गति है कभी थोड़ी कम भी हो जाएंगी, लेकिन अभ्यास सदा हमारा चालू रहे। क्योंकि ये अभ्यास बाबा ये नहीं कहता है कि एक ही जगह बैठ करके करना है, ये तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय, क्योंकि ये बुद्धि योग का अभ्यास है। मन बुद्धि जो अंदर सूक्ष्म मेरी चैतन्य शक्तियां हैं, वो सूक्ष्म चैतन्य शक्तियां जब इस अभ्यास में लगी हुई है, बाकी तो कर्म इंद्रियां अपना अपना काम करती रहेंगी, लेकिन स्थूल कर्म इंद्रियां हर एक अपना काम करती है। आंख का काम देखना है, देखने के सिवाय वो बोल नहीं सकती है आंखें। मुख का काम बोलना है, वो मुख बोलने के सिवाय देख नहीं सकता है। तो स्थूल कर्म इंद्रिया हर एक अपना अपना काम करती है, परंतु ये जो हमारा मन है उसका काम क्या है? मन का काम है चिंतन करना। क्या चिंतन करना? जब वो चेतन शक्ति है तो चेतन शक्ति का काम है शुद्ध चिंतन करना। अब हम अपने आप से पूछे, ये हमारा मन आत्मा कहती है, जब हम कहें जब सोचे हमारा मन, तो पहले ये जरूर स्मृति अपन को लाए कि आत्मा कहती है, मैं आत्मा कहती हूं मेरा मन, अर्थात मेरी संकल्प शक्ति, मेरा संकल्प। जब मैं आत्मा शुद्ध हूं तो मेरा संकल्प भी तो शुद्ध ही होना चाहिए। बार बार हम अपन को यह स्मृति जागृत कराते रहे, जरूर है जब मैं आत्मा स्वयं जागृत हूं और मुझे यह स्मृति है, मेरी ये चेतन शक्ति, मेरी संकल्प शक्ति और मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूं। मेरा संकल्प कौन सा होना चाहिए? जो बाप के महावाक्य, जो बाप की श्रीमत, वही वास्तव में मुझ आत्मा का शुद्ध संकल्प होना चाहिए। तो इसलिए ये हमें स्वयं स्वयं के ऊपर यह अंकुश रखना होगा कि मैं अपने चेतन शक्ति मन को यह पक्का करा दूं कि मुझे शुद्ध संकल्प के सिवाय और कोई चिंतन नहीं करना है। आप कहेंगे जो कुछ दिखाई पड़ता है उस पर तो ऑटोमेटिकली संकल्प चलता है। यही जो पुरानी आदत मन को पड़ गई है, और वो भी इसलिए पड़ी है क्योंकि उस समय हम स्वयं को भूले हुए हैं, हम अपने को आत्मा नहीं मानते थे, और वो सारी शक्ति, आत्मा की भी सारी शक्ति मन ने अपने हाथ में ले ली। तो जो चाहिए जहां चाहिए मन भागता ही रहा। अगर देखा जाए वास्तव में तो मन बेचारे को कोई ठिकाना ही नहीं मिलता है। जब आत्मा स्वयं को भूल जाती है तो मन भी बेचारा भटकता ही रहता है, उसको भी कोई एक ठिकाना नहीं। जो हर एक आंख जो देखेंगी, मन उसका चिंतन करता रहेगा, कान में जो आवाज पड़ेगा फौरन मन उन्हीं बातों पर चिंतन करने लग जाएगा, कोई कुछ बोलेगा और हमने कुछ बोला तो उसी का चिंतन, घड़ी घड़ी उसके संकल्प बदलते ही रहेंगे, कोई बात का उसको अपना ठिकाना नहीं। परंतु इस बात को स्पष्ट रीति से अभी हम समझ चुके हैं क्योंकि बाप ने अभी हमें ये पहचान दी है कि मैं शुद्ध आत्मा, ये मेरी संकल्प शक्ति है, स्मृति शक्ति मुझे आत्मा की चैतन्य शक्ति है, इसलिए मुझे अपने चैतन्य शक्तियों को फिर से बाप की स्मृति से, यह हम घड़ी घड़ी अपने को अंदर याद दिलाते रहे। भले हम समझते हैं इस बात को तो हमने समझ लिया है ना, हम जानते हैं, ये तो हम मानते ही है ना कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, मानते हैं, जानते हैं, उनके बन चुके हैं। हम पूछे अच्छा जो बाप की श्रीमत है, हर समय हर पल हर सेकंड हम स्वयं को बाप के श्रीमत के अनुकूल ही चला पा रहे हैं। यह शक्ति जो मुझ आत्मा के अंदर जागृत होनी चाहिए। जब हम अपने ऊपर यह केवल अटेंशन रखते हैं, हम लोगों ने जो शुरू में अभ्यास किया है उसमें हमें और कोई मेहनत नहीं दिखाई पड़ी, केवल अटेंशन देने की ही बात रही। अगर हम अपने अंदर इस बात को पक्का कर देते हैं, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति में कैसा भी हम काम करते रहे, परंतु अपने अंदर अपनी चेतन शक्ति को हमें शुद्ध चिंतन में ही लगाना है। यह अंदर की दृढ़ता आत्मक शक्ति जागृत करती है, और उस शक्ति के अंदर यह स्मृति बनी रहती है, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। शब्द भले इतने ही कहने में आते हैं, लेकिन जब सर्वशक्तिवान कहो और बाप के उन शक्तियों को मन के अंदर याद करते रहो, सर्वशक्तिवान बाप की एक तरफ महिमा को याद करे, दूसरे तरफ बाप से प्राप्तियों को याद करे, तीसरे तरफ अगर देखें सारी दुनिया, भगत इतने, किस प्रकार से भगवान को याद करते रहती है, क्या भगवान की शक्ति है, और वह भगवान मेरा बाप। सोचो आप एक सेकंड के लिए, केवल इतना ही सोचो और उसके अंदर स्वयं टुबकी लगाओ, अपना आत्मा का रूप इमर्ज कर लो। आत्मा अति सूक्ष्म है, छोटी सी बिंदु कहने में आता है, लेकिन वह बिंदु मास्टर बीज रूप है। बाप हमारा सृष्टि का बीज रूप है, सारी विश्व का रचता है, और ऐसे विश्व रचता की संतान मैं शुद्ध आत्मा मास्टर बीज रूप बाबा हम बच्चों को कहते हैं। अगर सोचा जाए बीज की क्या महिमा है, बीज को महान क्यों माना जाता है जब है इतना छोटा सा बीज, परंतु छोटे से बीज के अंदर पूरा ये सृष्टि रूपी झाड़ की शक्तियां, झाड़ का कितना विस्तार है। लौकिक रीति से देखा जाए बीज और झाड़ कितना विस्तार है, वो तो स्थूल छोटा सा झाड़ है और छोटा सा बीज है। ये सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, उसके अंदर कितने धर्म, कितने लोग, कितनी भिन्नता, क्या क्या सब चलता है आज तक हम देखते हैं। कितनी सारी बड़ी सृष्टि है जिसको तो जान भी नहीं सकेंगे पूरी रीति से, ऐसी सृष्टि का मालिक और ऐसे मालिक के हम बच्चे, रचता बाप के बच्चे। ऐसा बाप की महिमा को याद करते हुए और उस महानता में हम स्वयं को खो दे, समा दे, आप देखेंगे अंदर ही अंदर आत्मा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करेंगी। क्योंकि जब हम इतना प्यार से बाप के महानताओं को मान ले, जान लेते हैं, तो वह बाप की महानता आत्मा को शुद्ध बना ले। आत्मा के अंदर वह नशा जागृत होता है, मेरा बाप इतना ऊंचा है, ऐसे बाप की मैं संतान हूं। जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अगर उसको अपना बाप मिल जाए और बाप को पहचान ले, तो आप सोचो कैसे बच्चा बाप को चटक जाएगा। इसी प्रकार से अंदर आत्मा को ये अनुभव होता है, ये महसूस करती है। जब आत्मा एक बार अपने अंदर इस बात की महसूसता जागृत कर लेती है, वह स्मृति उसे कभी भूल नहीं सकती है। परंतु इतनी दृढ़ता से, इतने विश्वास से, इतनी पहचान से, इतनी महानता से हम बाप को जाने और उस महानता से हम बाप को याद करें, ये हो ही नहीं सकता है। आत्मा के अंदर वह स्मृति जागृत न हो। जब एक बार हमें स्मृति आ गई, कहा जाता है बच्चा जब जन्म ले लेता है माँ बाप को भूल नहीं सकता है। जब हम आत्माओं ने एक बार स्मृति स्वरूप बन गए, बाप को पहचान लिया, बाप की महानता का अनुभव कर लिया, तो हम अपने आप से पूछें, बाप को भूलना किस आधार पर होता, क्यों भूलते हैं। भूल जाता है, हम बड़ा सहज भाव से बोल देते हैं। अगर इस बात को हम थोड़ा भार रखें अपने ऊपर, यह शब्द, यह बात, अथवा इस प्रकार से वास्तव में हमारे लिए ये समझना भी योग्य नहीं है। शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिमान, अनादि अविनाशी पिता, और उसके लिए हम ये कहें, इसका मतलब क्या हो गया। अगर इस प्रकार हम स्वयं स्वयं से बातें करें। शुरू शुरू में बाबा ने हम बच्चों के अंदर इस प्रकार का अभ्यास डाला है, जिस कारण वो बात इतना हम लोगों को उस समय नशा चढ़ा देती थी, जो हम कभी ये कहते ही नहीं थे। बाप भूल जाता है, सारी दुनिया भूल गई। जिनों के पास लौकिक में शरीर का जन्म हुआ, वे सब भूल गए, कोई की भी याद न रही। ये बाप की महान शक्ति, ऐसी बाप ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई जो सारी दुनिया भुला दी। अब नॉलेज का विस्तार बहुत है, बाबा ने बड़ा स्पष्ट हर बात हमें समझाई है। उन्हीं बातों को हम बार बार अपने अंदर याद रखें, हम अपने में ये दृढ़ता जागृत करें। कमी इस बात की है, फौरन हमारे अंदर ख्याल आता है, दुनिया में तो रहते हैं ना, ये तो थोड़ा बहुत तो होगा ना। बस ये संकल्प किसको आता है? जानते हैं दुनिया में रहते हैं, बाबा भी जानते हैं मेरे बच्चे इस दुनिया में हैं। ये हमारे चैतन्य शक्तियों की बात है। अंदर से मेरी चैतन्य शक्ति, हमारा बुद्धि का योग, सर्वशक्तिमान बाप, मैं जिसकी हूं जो मेरा है, यह अंदर का निश्चय, हमारा बुद्धि का योग सदा बाप से जुटा रहेगा। और वह बुद्धि का योग जुटा रहने से आत्मा अंदर ही अंदर शक्तिशाली बनती जाएंगी। कर्म भले जो भी है वो कर, क्योंकि बाबा का ज्ञान ही ये है। घर ग्रस्त में रहो, परिवार को संभालो, परंतु हर कदम पर, हर सेकंड पर, हर संकल्प में मेरी याद बनी रहे। ये तो बाबा की बात हम याद कर लेते हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ करो, हर सेकंड हर संकल्प मेरी याद में ही तुम्हारा रहे। ये बात भी हम साथ साथ याद रखें तो अंदर आत्मा शक्तिशाली बनती जाएंगी, और वह शक्ति हमें कर्मों में दिव्यता लाती रहेंगी, क्योंकि यह बाप की शक्ति आत्मा को शुद्ध बनाती है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी याद से ही मुझे याद करो, अनेक जन्मों के पाप दगत हो जाएंगे। बाप के महावाक्य जो सिद्ध होते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाप ही पतितों को वाकर पावन बनाते हैं। हम आत्माओं को बाप ने ऐसा पावन बनाया है, जो हम आत्माओं के साथ साथ ही बाप सारी दुनिया को पावन बना लेता है। ऐसा बाप ने हम आत्माओं को पावन बनाया है, कदम कदम पर, सेकंड सेकंड पर, हर संकल्प में हम बाप की इन महानताओं को याद करते हुए बाप की शक्ति अपने अंदर जागृत करते रहे, आत्मा शुद्ध बनती जाएंगी। जितनी जितनी आत्मा शुद्ध बनेगी, आत्मा की दिव्यता जागृत होती जाएंगी, हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाएंगी। दिव्य बुद्धि के अंदर वह शक्ति रहती है, जो बात हम करना चाहें वो कर सकते हैं, परंतु जब तक हमारी बुद्धि दिव्य नहीं बनी है तो हमारे संकल्प में भी इतनी शुद्धता नहीं आती। एक तरफ हमें अपने में दृढ़ता को जागृत करना है, और उसी दृढ़ता के साथ साथ अपना अभ्यास चालू रखना।